SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। रूस और यूक्रेन युद्ध से बचकर निकले भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने की दिशा में भारत का ऑपरेशन गंगा अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। इस मिशन को सफल बनाने में भारत के यूरोपीय देशों में स्थित कई दूतावासों सहित देश की 6 निजी एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना लगातार लगी हुई हैं। विदेश मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक तकरीबन 16,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, जबकि 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन छोड़ने में सफल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भयानक बमबारी की चपेट में आए खार्किव से तकरीबन सभी भारतीय निकल चुके हैं।
Moving on to Kharkiv, there are some positive development in terms of what we understand is that almost all Indians have now left Kharkiv city. That's certainly a very positive development. As you know, this was an area of considerable concern for last few days. So that's something positive movement. In nearby Pisochin, is one of those safe areas that we had moved out people about now a couple of days ago. As of a few hours ago, there were less than 300 students there. I think 298 was the number our embassy put out, who were to be evacuated out westwards. We hope to complete that task by today.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह पर अपनी सरकार द्वारा यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सकुशल लाने की प्रशंसा की।
आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुश नसीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा।
लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक अभी भी लगभग 700 भारतीय छात्र सुमी शहर में फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कवायद जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुमी में फंसे भारतीय छात्रों का वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर हमला बोला है।
हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। यहाँ पे प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग की हेल्प कीजिए जी, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान है। पीने के लिए पानी नहीं है, कल रात से हम पानी नहीं पिए।
हिंदुस्तान के हजारों युवा यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए।
श्री बागची ने बताया कि अन्य शहरों से भारतीय छात्रों के निकल जाने के बाद अब भारत का सारा फोकस सुमी पर केंद्रित है।
The main focus is now on Sumi. This is a little in the northeast on the border with Russia. Now here, of course, this has been in the news a lot, and we are exploring multiple options for evacuating our citizens, students out of there. But let me reiterate, the main challenge remains the ongoing shelling there, ongoing violence there, and the lack of transportation, primarily. But even more the transportation, I think it's a problem of having a secure and safe way to get them out while they're not under threat. We are in touch with all concerned regarding possible movement. The best option for us would be a ceasefire, of course, that allows our to get our students out. And we, in this connection, we have been strongly pressing both the Russian and the Ukrainian sides to allow this kind of a local ceasefire, perhaps just to get a corridor for our students. It's not yet happened, but we are continuing to push for that. Meanwhile, I would urge all our students who are there in Sumy, we know what you're going through. It's a tough situation. You are managing it with fortitude. Please stay safe. Avoid unnecessary risks. We feel your pain, the difficulties you're going through. Just bear with us, as you see. Please follow the advisories our embassy is issuing. We are, the complete attention of our evacuation efforts are now on getting you out safely.
स्थिति का सही जायजा लेने के लिए यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्विटर के माध्यम से उन सभी भारतीय नागरिकों से जो अभी भी यूक्रेन में हैं अनुरोध किया है कि वे संलग्न गूगल फॉर्म में अपना नाम, जगह आदि का ब्यौरा तत्काल भरें, जिससे उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की जा सके। भारतीय समय के अनुसार रविवार देर रात भारतीय दूतावास ने सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को संदेश दिया है कि वो बेहद कम समय में वहां से सुरक्षित निकलने के लिए तैयार रहें। आज 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान है। इस अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और उससे लगे 7 अन्य जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब सब लोगों की निगाह 10 मार्च पर टिकी है, जिस दिन मतगणना के बाद सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन 5 राज्यों में इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर है और उलटफेर की उम्मीद भी है। अपने अपने अंदाज में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही एक पारी और 222 रनों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की। भारत के पहली पारी के 574 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम पहली पारी में रविवार की सुबह मात्र 174 रनों पर लुढ़क गई। भारत द्वारा फॉलो ऑन दिए जाने के बाद दूसरी पारी में भी श्रीलंकाई टीम खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और रविवार के ही दिन केवल 60 ओवर में 178 रनों पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा को इस मैच के हीरो के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल 175 नाबाद रनों की पारी खेली बल्कि श्रीलंका की पहली पारी में 41 रन देकर 5 और दूसरी पारी में 46 रन देकर 4 विकेट झटक कर एक अनूठा कीर्तिमान भी स्थापित किया। एक ही टेस्ट मैच में 150 या उससे ज़्यादा रन और 10 विकेट लेकर दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने से जडेजा केवल एक विकेट से चूक गए। मैच के बाद जडेजा ने फिल्म पुष्पा के हीरो की नकल करते हुए अपनी उपलब्धि के बारे में बात की।
पुष्पा, पुष्पा राज, थक्के दिले। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा मैच बहुत ही कम जाता है कि बैटिंग में आप इतने रन भी मारो और विकेट भी लो, तो नहीं बस अच्छा हुआ, बस यही मोमेंटम कंटिन्यू करने को देखूंगा। लकीली ये मैच में तो जो भी मेरे साथ आ रहा था वो 100-100 रन की पार्टनरशिप कर रहा था, तो इस बार अलग ही हुआ। बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो भी बैट्समैन आ रहा है वो 100 रन की पार्टनरशिप करे, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना लंबा इनिंग खेला इंडिया के लिए और कॉन्ट्रीब्यूट किया।
भारत ने न्यूजीलैंड में खेले जा रहे वुमेन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में रविवार को अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से हरा अपना विजयी अभियान शुरू किया। भारत ने पहले खेलते हुए 7वें विकेट की 122 रनों की साझेदारी की बदौलत 244 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। भारत के स्कोर में पूजा वस्त्रेकर, स्नेह राणा और स्मृति मंधाना के शानदार अर्धशतकों का योगदान रहा। पाकिस्तान की ओर से नशरा संधु और निदा डार ने 2-2 विकेट लिए। भारत की शानदार गेंदबाजी का मुकाबला कर पाने में असमर्थ पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में मात्र 137 रनों के योग पर ही ऑल आउट हो गई। सिदरा अमीन ने 30 रन और डायना बेग ने 24 रन बनाए। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेट झटके, जबकि झूलन गोस्वामी और स्नेह राणा ने क्रमशः 2-2 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार पूजा वस्त्रेकर को उनके शानदार 67 रनों के लिए मिला। इस मैच की खास बात रही 39 वर्षीय भारतीय कप्तान मिताली राज का 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बनना। अभी तक केवल भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियादाद को ही यह श्रेय प्राप्त था। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको नमस्कार।